अरेस्ट करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्टों को, जिनमें उनकी फिर डेथ्स हुई थी, दो टेररिस्ट मारे गए थे, तो सोनिया गांधी उसके ऊपर जी बड़ा रोई थी। तो हम पूछना चाहते हैं कि उसका इन ट्रेटर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है और वो उनको क्यों सिंपथी दिखा रही है और क्या वो उनको पसंद करती है। और जो ये जो पुलिस जो थे, दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्रा शर्मा, वो तो इनके खिलाफ लड़ रहे थे और जब ये मरे तो ये इनको बड़ा जी अफसोस होया। तो ये जो है बड़े एरोगेंट किस्म की इन्होंने एक अलायंस बनाई है, कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस, जो कि मुल्क को जो है कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, अब इस पे जाहिर है कि इनकी बेटी जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने तो चुप नहीं करना था। उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा बयान जो कि आजकल बीजेपी दे रहा है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन शो करता है, क्योंकि उनको पता है कि हम जब तक इस तरह के एब्सर्ड स्टेटमेंट्स नहीं देंगे हम फेवर गेन नहीं कर सकेंगे इन इलेक्शंस के अंदर। और वो कहने लगी कि जी बीजेपी के लीडर्स इतने लो लेवल पे आ गए हैं कि अब वो झूठ बोलने पे आ गए हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और लोगों को बल्कि स्केयर कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं उनको, ताकि वो जो है किसी भी दूसरी पार्टी को वोट्स ना दें, सिर्फ बीजेपी को दें। खुश हो आमिर, क्या बात है जी, देखा है कैसे पाकिस्तान के पीछे पीछे चल रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, अब जनाब एक और नया सियापा इंडिया में शुरू हो गया है, दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स जो है बाय सैम पित्रोडा, चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, उन्होंने जनाब बहुत ज्यादा उनको बीजेपी का क्रिटिसिज्म आया और फिर कांग्रेस जो है उसने भी छोड़ना नहीं था इनको, बीजेपी के लीडर्स जो थे इनको फिर हिट किया गया, इंक्लूडिंग अमित मालविया एंड जनत सिन्हा। कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं ऑफ कम्युनिकेशन जयराम रमेश साहब जो हैं, उन्होंने जनाब फिर ओल्ड जो है ट्वीट्स वो निकाल लेंगे जो इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर, ये अब लड़ाई शुरू हुई है। जयराम रमेश साहब जो हैं उन्होंने मालविया साहब की ओल्ड ट्वीट्स निकाली जो कि कन्वीनर हैं बीजेपी के आईटी सेल के, उन्होंने अपने एक्स पे रमेश साहब ने लिखते हुए कहा कि कांग्रेस का तो जो स्टैंस है वो बड़ा क्लियर है कि हम कोई नया वेल्थ टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो इसको बड़ा सपोर्ट करते रहे हैं और क्या मोदी जी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान सिन्हा के बारे में कहा जी कि उन्होंने तो 15 मिनट पूरे स्पेंड किए थे बहुत ज्यादा इनहेरिटेंस टैक्स को 55% तक लेकर जाने के लिए, जैसे कि यूएस में है वैसे ही उन्होंने फेवर किया था कि हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। तो पीएम साहब के पास इसका क्या जवाब है, हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट राजीव गांधी जी जो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो एस्टेट ड्यूटी जो थी 1985 में एबॉलिश की थी, लेकिन मोदी सरकार जो है वो ये लेकर फिर से आना चाहते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स जो थे इस आर्टिकल के वो भी शेयर किए। मालविया साहब जो हैं फिर वो भी चुप नहीं रहने वाले थे, उसके ऊपर फिर ये जो ज्ञान सिन्हा और मालविया साहब के ऊपर एलिगेशंस आए थे, तो मालविया साहब ने इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई और उन्होंने कहा जी कि चिदम्बरम साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जब थे 2012 में, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो है आइडिया पेश किया था। अब जी जब इन्होंने ये कहा, चिदम्बरम साहब भी चुप बैठने वाले नहीं थे, चिदम्बरम साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी ये जो कंट्रोवर्सी है ना बीजेपी मैन्युफैक्चर अब कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें तो एक भी लफ्ज नहीं है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनहेरिटेंस टैक्स का, तो बीजेपी ये किस तरह से बात कर रही है। बहरहाल जी, घमसान बोलते हैं ना, वो घमसान की जंग जो है दोनों पार्टीज के बीच में चल रही है जी। आइए, और कल हमने आपको बताया था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि भई ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, थोड़ा इनको रोको, ये कैसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो आज फाइनली जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जागता है ना कभी कभी, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आज जाग गया है जवान है जी। तो ये जब जागे हैं आज, तो आज इन्होंने कहा है जी, नोटिसेस भेजे हैं, शो कॉज नोटिसेस भेजे हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करने पे मोदी जी को, कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट मल्लिक अर्जुन खड़गे को, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी को, उनको। और उन्होंने कहा जी कि मंडे को 11 बजे तक मुझे आके बताओ कि आपने ये कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट क्यों किया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं आप लोगों की पार्टियों के, उनको बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है और उनको कंप्लायंस करना चाहिए ये जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है। मोदी जी ने राजस्थान की रैली में जो कहा था कि जी कांग्रेस सारी की सारी आपसे वेल्थ लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देगी मुसलमानों के अंदर, तो खर्जे साहब ने इसको हेट स्पीच कहा था और कहा था कि ये एक पॉलिटिकल लीडर के बहुत ही बिलो डिग्निटी है। बीजेपी के जो चीफ थे जेपी नड्डा, उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि भई आप जो इनके खिलाफ है एक एक्शन लें। तो अब ये इसके अंदर जो है क्या एक्शन लेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो तो भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको लेटर एंड स्पिरिट के अंदर आप सबके सब लीडर, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के नहीं बल्कि सारे ही जो हैं वो इसके ऊपर जो है अमल दरामद करें। और उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा सिर्फ इन लोगों को नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उनको भी भेजे गए हैं अब नोटिसेज, और उनको भी सेपरेटली कहा जी कि आप जो कॉन्स्टेंटली मोदी जी और बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हो तो आप भी आके सामने एक्सप्लेन करो कि आप ये किस बेसिस के ऊपर कर रहे हो। लेकिन बड़ी बात है आज लोगों ने जो एक्टिविस्ट इंडिया में उन्होंने कहा जी आखिरकार इसी आए जो है वो जाग गई है, क्योंकि सालों से मोदी जी के खिलाफ जो है ये कंप्लेंट्स की जा रही थी और कभी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया था, तो बड़ी बात है। प्रिया दर्शन साहब जो है फिल्म मेकर, उन्होंने आज अपने एक्स के ऊपर लिखा है जी कि अब वो एक नई फिल्म अक्षय कुमार साहब के साथ बनाने वाले हैं और 14 साल के बाद इनके साथ रीयूनाइट करेंगे। इन दोनों ने मिलकर बड़ी जबरदस्त कल्ट फिल्म्स बनाई थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि हेरा फेरी जो 2000 में बनी थी और फिर भूल भुलैया जो 2007 में आई थी। तो प्रिया दर्शन साहब ने कहा जी कि मैं राम मंदिर के ऊपर एक डॉक्यू सीरीज बना रहा था जो कि अब कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अक्षय कुमार के साथ फिर से काम करूं। इस मूवी को जिसको कि अभी नाम नहीं उन्होंने दिया है उसको एकता कपूर जो है प्रोड्यूस करेंगी। अलबत्ता उन्होंने कुछ कुछ रूपरेखा उसकी बताई है, उन्होंने कहा जी कि ये एक हॉरर फैंटेसी और ह्यूमरस फिल्म होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये भूल भुलैया जैसी होगी? नहीं, ये भूल भुलैया जैसी बिल्कुल नहीं होगी। भूल भुलैया साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, ये वाली जो है फैंटेसी है, मैजिक है और जो हिंदुस्तान के ओल्ड सुपरस्टिशंस हैं उनके ऊपर जो है बेस्ड है। तो मैं बड़ा खुश हूं अक्षय कुमार के साथ काम कोलैबोरेट करने के लिए, उसके साथ काम करना हमेशा बड़ा खुशी का बायस होता है। मिस यूनिवर्स 2000 लारा दत्ता हिंदुस्तान की, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उनसे पूछा जा रहा था उस इंटरव्यू के बीच में कि भाई ये जो ट्रोल्स आते हैं सोशल मीडिया पे इसको आप कैसे लेती हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं और कमेंट्स आपको देते हैं, वो कहती हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे ट्रोल्स देते हैं, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरी फॉलोइंग कोई इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1.3 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं। तो वो कहती हैं जी मैं तो कभी कभी सोशल मीडिया पे कोई चीज डालती हूं, मेरे फॉलोअर्स भी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हां कभी कभी बड़े गंदे किस्म के कॉमेंट्स आते हैं जिसमें किसी ने लिखा होता है अरे ये तो बुढ़ी हो गई, अरे ये तो मोटी हो गई, लेकिन वो कहते हैं जी उनके इन बातों से मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि ये सारे जो इस तरह के अकाउंट्स होते हैं ये कुछ खास किस्म के लोग चलाते हैं और उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो चूंकि मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं उनके ऊपर कोई भी जजमेंट पास नहीं करूंगी। तो वेरी स्मार्ट ऑफर। और जनाब नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर जो है संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी 1 मई को आने वाली है, उस सिलसिले की एक प्रीमियर जो है वो शो वो जो होल्ड किया गया था और उसके अंदर बड़े बड़े सितारे जो थे वो नजर यहां पे आए थे। यहां पे आलिया भट्ट जो हैं अपनी मदर सोनी रजदान और मदर इन लॉ नीतू कपूर के साथ देखी गई, लेकिन इनके हस्बैंड रणवीर जो थे रणबीर कपूर जो थे वो एब्सेंट थे। इसके अलावा अदिति राव हैदरी सोनाक्षी सिन्हा और भी बहुत सारे सितारे नजर आए, लेकिन जो इनके बड़े क्लोज चड़ी बड़ी हैं सलमान खान साहब वो बड़े ही अजीब से रंग ढंग में नजर आए। ये जो संजय लीला भंसाली थे इन्होंने अपने जो है सोशल मीडिया पे लिखा था कि ये एक बड़ा ही हीरा मंडी द डायमंड बाजार बड़ा ही स्टार स्टडेड इवेंट है और नेटफ्लिक्स ने भी इसके ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा जी था नेटफ्लिक्स ने कहा कि इट इज अ नाइट ऑफ रॉयल नाइट ऑफ ग्लिट्स ग्लैमर एंड ग्रैंडर एंड द सीरीज प्रीमियर्स ऑन May 1 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। लेकिन जो सल्लू भाई हैं वो देखे गए बड़ी क्वर्की किस्म की, उन्होंने एक ट्राउजर्स पहनी हुई थी ड्रैगन बॉल जी का उसके ऊपर प्रिंट बना हुआ था, तो लोगों ने कहा कि अरे ये कहीं एनिमी के फैन तो नहीं है। तो बहरहाल जी लोगों ने काली तो उन्होंने ऊपर टी शर्ट पहनी थी लेकिन नीचे उन्होंने बड़ा ही वो जबरदस्त था ड्रैगन बॉल जी का प्रिंटेड सा एक पैंट पहना हुआ था, तो उसके ऊपर लोगों की काफी नजरें गई। ब्रैड मर्चेंट जो हैं जी उन्होंने जनाब 2 दफा स्कोर किया और इसमें इंक्लूडेड था जो कि विनर थे थर्ड पीरियड में और उन्होंने असिस्ट भी किए उसको बॉस्टन ब्रूंस ने, लेकिन फिर भी उसकी वजह से बॉस्टन ब्रूंस ने डाउन किया टोरंटो मेपल लीव्स को 4-2 से, और अब ये सीरीज जो है आगे चल रही है 2-1 से, वरना अभी तक ये जो है 2-0 से आगे चल रही थी। लेकिन मेपल लीव्स आपको मैंने बताया ही है 82 गेम्स है, मैंने पहले ही आपको कल ही कहा था, मजदे कह रहे थे 82 गेम्स, मैंने कहा मेपल लीव्स ने उसमें से दो ही जीतनी है, तो दो उन्होंने जीत ली हुई है, अब उनका हारने का चक्कर शुरू हो गया, तो वो हार गए जी, अपनी तीसरी गेम जो थी वो हारे। अब जो बेस्ट ऑफ सेवन है वो सैटरडे को, उसमें से चौथी गेम होगी स्कॉशिया बैंक अरीना के अंदर, और पांचवीं गेम जो ट्यूसडे को होने वाली है वो फिर उसके लिए इस टीम को बॉस्टन जाना पड़ेगा, वहां पे होगी। आईसीसी ने जी अपना अपडेट किया है नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर डिटेल्स, जो कि न्यूयॉर्क में है, जो कि होस्ट करेगा 2024 का T20 वर्ल्ड कप, और इसके अंदर जो है उन्होंने बताया है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है यहां पे June 9 को होगा, जो ये जो है स्टेडियम 8 मैचेस होस्ट करेगा, और फर्स्ट वन जो है वो यहां पे होगा विनर्स जो थे 2014 का श्रीलंका, और उसका जो है साउथ अफ्रीका, उसके साथ ये फेस ऑफ करेंगे। तकरीबन 34,000 के करीब फैंस जो हैं यहां पे बैठ सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट स्टैंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो रिमेनिंग स्टैंड्स हैं उनके ऊपर काम हो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप अब सिर्फ 39 डेज अवे है, तो लोग कह रहे थे कि क्या ये कंप्लीट काम हो जाएगा, तो आईसीसी ने कहा कि कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो ग्रुप्स चार बने हैं, ग्रुप ए के अंदर है इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, ग्रुप बी के अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान, और ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पेपुआ न्यू गिनी, और ग्रुप डी के अंदर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और नेपाल शामिल हैं। तो June 9 को जैसे मैंने आपको बताया इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है यहां पे होगा। पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम को व्हाइट वॉश किया जी वेस्ट इंडीज की टीम ने, विमेन्स टीम ने 3-0 से, जो हमने आपको कल खबर बताई थी, लेकिन उसके रहते अब जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन बिस्मा मारूफ है उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है आज अनाउंस किया है विद इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने जो है अपना ODI डेब्यू इंडिया के अगेंस्ट किया था 2006 में, T20 डेब्यू जो है वो उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट 2019 में किया था। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बैट्स लेडी हैं ये, और पाकिस्तान को 276 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और इन्होंने 6,262 रन बनाए हैं इंक्लूडिंग 33 50s यानी कि हाफ सेंचुरीज, और 80 विकेट्स इन्होंने ली हैं। ये राइट आर्म लेग स्पिन करती थी और ये जो थी शी वॉज पार्ट ऑफ द टू गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान ने क्रिकेट में जीते थे एशियन गेम्स में 2010 और 2014 में, उसका ये हिस्सा थी। इन्होंने कैप्टन भी किए हैं पाकिस्तान के लिए 96 इंटरनेशनल मैचेस। आज रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करते हुए इन्होंने कहा जी कि ये गेम जो है मुझे बहुत ज्यादा, मैं इससे प्यार करती थी लेकिन अब मैं छोड़ रही हूं। इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी और इसमें बहुत सारे मुझे चैलेंजेस आए, विन्स आए, अनफॉरगेटेबल मेरी मेमोरीज बनी है, तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं अपनी फैमिली का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आईसीसी का भी जिन्होंने मेरे पीसीबी का भी जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। तो यह आज इन्होंने कहा। और जनाब न्यूजीलैंड जो है उसने आज का मैच भी जीत लिया, तो एज अ रिजल्ट न्यूजीलैंड लीड्स 2-1 इन 5 मैच सीरीज। द डिफीटेड पाकिस्तान बाय 4 रन ओनली, बहुत ही बैड हुआ ये, और पाकिस्तान को जो था दिया था इन्होंने टारगेट 179 का। इनको पहले कहा गया था कि जी आप बैटिंग करेंगे, बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 178/7 बनाए थे, और ये जो था फोर्थ T20 लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा था, इसमें पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया 175 पे, तो उसकी वजह से ये 4 रन से जो है ये हार गए। इसके अलावा जो पीसीबी है उसने कहा है जी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पाकिस्तान विमेन्स टीम सिलेक्शन कमेटी, और डिस्पाइट सीरीज लॉस टू वेस्ट इंडीज वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान विमेन्स टीम के अंदर हमारा बड़ा भरोसा है। पाकिस्तान अभी भी 5th पोजीशन पे खड़ा हुआ है 10 टीम्स आईसीसी विमेन्स चैंपियनशिप 2022-25 के अंदर। टॉप 5 टीम जो हैं वो जो होस्ट है इंडिया जो कर रहा है ये विमेन्स टीम के मैचेस उसके वो वहां पे खेलेंगी और डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए। बाकी के जो यहां पे टीमें हैं वो क्वालिफाई उनको क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा टू मेक टू द मेगा इवेंट। पीसीबी जो है उसने कहा है जी इस सिलसिले में कि हमारे जो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी के जो पैनल के मेंबर्स थे जैसे कि असमाविया इकबाल, मरीना इकबाल और अब्दुल वो रहेंगे, इसके अलावा इसके अंदर शामिल किया जा रहा है अब्दुल रजाक और असद शफीक को भी। ये दोनों जो हैं असद शफीक और रजाक जो मेन्स नेशनल सिलेक्शन कमेटी है उसका भी हिस्सा है। इसके साथ साथ जो फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं बतूल फातिमा वो भी ज्वाइन कर रही हैं। कोच और कैप्टन जो हैं वो भी पार्ट होंगे ऑफ विमेन सिलेक्शन कमेटी, उसके बेसिस के ऊपर फिर अब नई टीम जो है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। कॉर्टिंग चैंपियनशिप जो हुई है उसके अंदर पाकिस्तान के इनाम अहमद जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो विक्ट्री जीती है अलॉन्ग विद हिज टू वेरी टैलेंटेड ड्राइवर्स फ्रॉम पाकिस्तान जिसको कि इसने हैंड पिक किया था, मैज चुगताई और शामिक सईद, खास तौर पे जो शामिक है उसको तो बिल्कुल हैंड पिक इसने कराची से किया था। ये जो मैचेस थे कॉर्टिंग के ये चल रहे थे अंडर नेशंस कप इन दुबई 12-आवर एंडोरेंस कॉर्टिंग रेस, उसके अंदर इन्होंने जो है इंडिया को भी पीछे छोड़ा 9 लैप से ये आगे चल रहे थे। आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस थी और इन्होंने आउट पेस किया 30 दूसरे जो कंपेटिटर्स थे उनको। जो ये क्वालिफाइंग राउंड था उसमें पाकिस्तान जो था सेकंड पोजीशन पे था और फोर्थ ओवरऑल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। उसकी वजह यह है कि 30th पोजीशन पे ये चले गए थे जब इनका टायर पंक्चर हो गया था और फिर इन्होंने अपना टायर फटाफट चेंज करके स्पीड दी और चौथे नंबर पे आए। अगर इनका टायर कहते हैं जी पंक्चर ना होता तो ये अपना पोडियम फिनिश भी कर सकते थे। तो एनीवेज गुड न्यूज फॉर कार्टिंग चैंपियनशिप और जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज है क्योंकि स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर काफी ज्यादा पाकिस्तान के जो चैंपियंस हैं वो मतलब प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं। सो मैंने सोचा कि जी एक अच्छी न्यूज के साथ आपको जो है वो किया जाए। और यहां पे कुछ आए हुए हैं दहशतगर्द जिनका के जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, उन्होंने इंतहाई यहां पे मेरी न्यूज खराब करने की कोशिश की है लेकिन मैंने भी उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। मैंने कहा बजा लो जितने पटाखे बजाने हैं आपने कर लो जो भी, लेकिन मैं अपनी न्यूज खत्म करूंगी। तो मच थैंक यू वेरी मच आमिर ये पटाखे बजाने के लिए
आतंकवादी
हाँ तुम सारे जो आतंकवादी हो तुम्हारी सारों की ऐसी तैसी, मैंने अपनी खबरें जो है पूरी की हैं जी
तमाम सामीन जो आवाजें सुन रहे हैं हमारे ऑफिस में कुछ आतंकवादी आ गए
हाँ।
और ऐसा करते हैं कि न्यूज तो हो गई है
हाँ जी।
हमारे पास है अभी भी टाइम 6:30 बजे जो है लियाकत भाई भूली बिसरी यादों के साथ आपके साथ शामिल होंगे। हम ऐसा करते हैं छोटा सा टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक ले लेते हैं
ब्रेक लेते हैं और एक प्यारा सा गाना लगाते हैं
फिर एक प्यारा सा गाना भी लगा देते हैं और फिर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो उसमें आप मेरी बेइज्जती कर लीजिएगा
क्योंकि तुम शुरू में कर चुके
हो। लेकिन मैंने सरेंडर किया है, इतना कैसा अच्छा आदमी आपको
बहुत ही अच्छे यानी खूबसूरत के हो साथ साथ तुम अच्छे भी हो हैं
अमित। थैंक यू
वाह जी क्या बात है क्या
ऐसा करते हैं टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं
ठीक है
और उसके बाद फिर गर्मा गर्म शुरू करते हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें कॉल भी कर सकते हैं 416-620-1778
साढ़े कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार, एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो, इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक्ट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने की निम्रता सहित बेनती की जाती है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਟਰੱਕ ਕਾ ਘੂਮਤਾ ਪਹੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾ ਜ਼ਾਮਿਨ। ਆਪਕਾ ਟਰੱਕ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਰਾਹ ਪਰ ਗਾਮਜ਼ਨ ਰਹੇ। ਟਰੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਟਰੱਕ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਵਿਸ ਕੇ ਲਿਏ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਯੂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅੰਟੇਰੀਓ, ਨੋ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨੀਡਿਡ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਅਬ ਤੀਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਯੂ 519-622-0660, quicktruckcube.com।
ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੇ ਫਲ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ। ਬੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਕਾਰਪੋਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ, ਸਕਾਰਪੋਰੋ, ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਫੋਨ 416-264-3111।
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں 770 کے ڈائل پر سن رہے ہیں اور ای آواز ٹی وی پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم آپ سب کو ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں اس گرما گرم پروگرام میں۔ جی گرما گرم خبریں سن لیے، اب تھوڑا سا
پکھ دیاں خبریں
ہاں، تھوڑا آج کچی پکی رہ گئی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا یہاں بھی گیس کے پرابلم چل رہے ہیں، ٹیکنیکل مسئلے مسائل تھے، تو آپ نے پکڑ دیا خبریں سنا دی،
ساری سنا دی ساری ہو گئی اللہ کا شکر ہے۔ تم لوگوں نے بہت ہنگامہ، دہشت گردی، سب کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھ لو پھر بھی جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے، وہ تم جیسے تقریب کار پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں ایسے ہے،
تو ہم کیا کریں پھر،
ناچو
آپ مطلب پھر آپ والا گانا گانے کیا، ناچ میری بالکل
تم جو کہہ رہے ہو بار بار تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری، تو ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہم کہتے تھے تھینک یو ویری مچ پٹھا ہو کے ناچ، سمجھ آئی؟ تو اس لیے تمہیں میں کہہ رہی ہوں، تمہیں اتنی دفعہ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ پٹھا ہو کے ناچ۔ اب
پٹھا کیا ہوتا ہے؟
پٹھا مینس الٹا۔
اچھا الٹا، تو سیدھا نہیں بول سکتی آپ، الٹا ہو کے ناچ،
پٹھا ہو کے ناچ،
کوئی بات نہیں، آپ کو بھی نچا دیں گے کر دیں گے۔
اچھا اچھا ٹھیک ہے،
آپ کو بھی نہ جا سکتے۔ ویسے آج آپ بڑے وائبریٹ کلر جو ہے وہ پہنی ہوئی، اس کی خاص وجہ تھی،
کیونکہ میں نے کہا کہ یہ اب عامر سے زیادہ بھی امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، کالے کپڑے، کالے 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 کالے،
ٹی وی پہ،
ہاں تو میں نے کہا بھائی یہ کالے، اور اگر آپ کو،
اور مجھے لگ رہا ہے آپ نے 2-4 انجیکشن بھی لگا لی ہیں، آپ کی ایک اسکن میں گلو آ رہا ہے آج، پتہ نہیں
گلو آ رہا ہے، او ہو ہو کیا بات،
میں نے ایکسٹرا،
مجھے لگتا ہے کہ چونکہ تمہاری بدنیتی آج اسکرین پہ اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ تم ادھر بیٹھے ہو، تم جان بوجھ کے مجھے کالا کرتے ہو، آج ادھر جیشان بیٹھا ہے، اور دیکھو جیشان نے کتنا پیارا فلٹر لگایا، میں کتنی گوری نظر آ رہی ہوں۔
آپ نے پوری بات سنی نہیں نا،
نہیں نہیں،
اصل اسٹوری کیا ہے،
اچھا،
کیونکہ میں آج آپ کے قریب بیٹھا ہوں تو آپ، میرا گلو آپ کے اوپر آ گیا،
تمہاری ٹنٹ کا ریفلیکشن آ رہا ہے،
یہ آپ پوری بات کرنے دیتی نا بندے کو، جیشان نے فلٹر لگا دیا ہے، بندہ ساتھ قریب آ گیا، چاند روشنی بڑھ جاتی ہے، یہ نہیں سننا،
اچھا ایسا ہے،
فلٹر لگا دیا ہے، بندہ سامنے چاند آ گیا آپ کے بالکل قریب میں، دیکھا نہیں فل مون ہوتا ہے کہ ہر ایک گلو، پورا آسمان گلو کر رہا ہوتا ہے،
اوکھو مائی بیڈ،
ایسے نہیں گانے بنے ہو، چودوی کا چاند ہو، لیکن آپ آفتاب نہیں ہیں، آپ شادی جی،
تم یہ گانا تم اپنے لیے گا رہے ہو، چودوی کا چاند ہو یا آفتاب، تم نے اپنے لیے،
جتنے آفتاب بولیں گے خوش ہو رہے ہوں گے،
خوش ہو رہے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عامر، بات یہ ہے کہ تم آج کل بڑے مرجھائے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہو، کیا چکر، کیا رنگ،
گرمی آ گئی،
او ہو،
سردیوں میں خوش رہتا ہوں میں،
اچھا تم سردیوں کے جانور ہو،
گرمی آتی ہے तो वो उदास हो जाता
मुझा ओए होए होए। तभी मैंने कहा छोटा
सा गर्मी छोड़ के तो पाकिस्तान से ही आया था।
हाँ
यार यहाँ ठंडा वेदर होगा।
करांची में इतनी भी गर्मी नहीं पड़ती, इतनी तो नहीं होती, ट्रॉपिकल सा वेदर नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि तुम लोग समंदर के पास हो ना,
ह्यूमिड बहुत है ना वो, चिपाहट बहुत होती है।
अच्छा
की वजह से आपका पंजाब तो खुश्क है लेकिन यहाँ थोड़ा ह्यूमिड।
पांच दरियाओं का जो है पंजाब लैंड खारा पानी, हमने क्या करना है?
देखिए
देखो जो दरिया होता है ना, दरिया का पानी मीठा होता है, इसीलिए उसके
बहते पानी की जो एक वो खूबसूरती है ना एक समंदर की, वो पांच दरिया हो। माजर के साथ तमाम जितने मेरे पांच दरियों वाले ब्रदर सुन रहे हैं, मैं उसको नहीं, लेकिन एक
हमारा अपना,
लेकिन जो समंदर की जो एक वैल्यू है ना
बहुत खूबसूरत है। मैं जब भी कराची जाती थी ना, ऑनेस्टली तुम यकीन करो, मुझे हर कोई डिस्करेज करता था, ओ जी सुन्नी जो है वो उसको एक इमाम को मार दिया, एक शिया को मार दिया, फलाना कर दिया, मत जाओ उधर, ये हो रहा है, मारामारी चल रही है। मैं हमेशा कराची जाती थी बीच बीच में से ना, कभी कोई प्रोजेक्ट्स भी होते थे कभी, तो कराची जब भी गए ना ऑनेस्टली मेरा दिल उधर ही रह जाता था, खास तौर पर रात के वक्त वो जो बीच के पास वो जो रेस्टोरेंट खुल गए हैं ना, हाय 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 क्या बात है वल्लाही,
बहुत जबरदस्त।
वो तो क्या दुबई से ज्यादा का मजा देते थे। एक तो अपना कंट्री, कंट्री इज योर ओन है जी, ऊपर से
वो कहा ना दुबई आजकल तो कराची बना हुआ था।
हाँ बिल्कुल, कैसे कराची को हम बदनाम करते हैं, बिला वजह एक फुट पानी कराची में जमा हो जाता है,
पैसा खर्च करके भी पानी को जो है वो
नहीं कर सके। और तो
सिंध गवर्नमेंट और उनको
आप उसको जलील कर रहे हैं, और ऊपर से आप देखें जरा, ओ जी दुबई गवर्नमेंट के पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आते हैं, और वो फैसिलिटी आते जो है वो ऐसी है कि एयरपोर्ट के ऊपर से अगले से दुनिया को भी देखो कितनी नलायक है, जहाज ही नहीं उड़ा सकते। उस पानी भरे हुए में जहाज किसने उड़ाया? किस मर्द के बच्चे ने? पीआईए ने, चीते ने, चीते यार, चीते हैं पाकिस्तान।
बेसिकली उसको बेगम ने उसको टाइम दिया हुआ था।
अच्छा।
कराची का था ना, उसको हर हाल में पहुंचना,
घंटे में पहुंचना था,
घंटे में वापस कराची लैंड करना था। उसने कहा बारिश आए, तूफान आए,
मैं जाने
जहाज उड़ाना है,
हाँ जाना ही जाना
नहीं है ना,
तुसी मरो या ना मरो मैं तो उसे पहुंचना है,
एक घंटे में लैंड करना है।
आहो आहो,
बीवी ने टाइम दे दिया था उसको, तो पायलट क्या करता।
मुझे याद है हम लोग जब दुबई में थे तो कहीं पे भी, या मिडिल ईस्ट में भी जब हम ट्रैवल करते थे यार, कराची वालों के इतने मजे थे, हर वीकेंड में भी आ रहे हैं, घुमा फिरा शॉपिंग की कराची में, कराची से आए शॉपिंग की और फिर उसके बाद ही वापस चले गए,
डेढ़ घंटे की फ्लाइट आए।
और जब शॉपिंग फेस्टिवल खासतौर पर लगा होता था या कोई और,
मैं फ्राइडे जाना है सैटरडे नाइट वापस।
हाँ, और कितने तो जो चीते थे, इवन कतर, कतर वो जो फॉर्मूला वन रेसेस होती थी ना, आए जी वीकेंड के लिए आए और उसके बाद साथ ही चले,
थर्सडे नाइट या फ्राइडे,
फ्राइडे नाइट आए, हाँ सैटरडे वाली ली और फिर उसके बाद जी सैटरडे इवनिंग को ट्रैवल किया,
डेढ़ घंटे में तो अब।
हाँ यार क्या मजे हैं कराची वालों के, यार क्या मजे हैं कसम से, क्या
गुरूर नहीं करते,
गुरूर
नहीं कभी नहीं किया,
कभी नहीं किया,
कभी नहीं। लोग इतनी तारीफ करते हैं, यहाँ भी जब मैं बैठा हूँ सुबह से लोग तारीफें कर रहे हैं, दोपहर में भी, शाम में भी, घर भी जाता हूँ तारीफ ही तारीफ।
नहीं बड़ी जबरदस्त जो बिजनेस कम्युनिटी है ना कराची की, वो तो बहुत ही जबरदस्त है, दे आर वेरी नाइस।
नहीं बिजनेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त है, मैं ये कहता हूँ।
अच्छा।
मैं पंजाब में भी काम किया, मेरे
अच्छा,
दोस्त यार सारे चिनियोटी हैं।
ओके ओके,
मेरे 80% दोस्त यार जो कराची में है,
पंजाबी
वो सब पंजाबी थे, चिनियोटी, तो फैसलाबाद और लाहौर इधर उधर के, उनकी फैक्ट्रियां हैं टॉवल्स की और ये वो फला,
तो ऑनेस्ट इतना हुए ना पंजाबी हुए, क्योंकि चिनियोट तो एक इलाका है पंजाब का,
लेकिन पंजाबी हुए पे,
हाँ हाँ, तो तुम ये ना बोलो ना कि चिनियोटियों के साथ दोस्ती है, तुम ये बोलो मेरे सारी पंजाबियों के साथ है, जो तुम जैसे भी कह रहे हो कि फैसलाबाद से थे और यहाँ
उधर से भी थे, चिनियोट से थे, फैसलाबाद से, लाहौर के,
लाहौर से, तो फिर पंजाब
डेडिकेटेड होते हैं लोग, मुझे लगता है वो चंद जो है वो खराब हो गए, भारत बाकी सब अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारी लीडरशिप का आमिर मैं तुम्हें बताऊं, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लीडरशिप के सारे सियापे हैं, एक दफा कभी कोई अच्छी आ जाएगी ना, वो इन लोगों को यूनाइट कर देगी। ऑनेस्टली तुम देखना कि पाकिस्तान ने किधर का किधर जाना है, अभी भी अभी जैसे वो मैं कल की खबर सुना रही थी ना कि हबीब साहब ने उसको प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि भाई तुम इंडिया के साथ दोस्ती बनाओ।
हाँ तो आप एक कैदी वहां बैठा हुआ उससे
भी, और एक कैदी के साथ भी बनाओ और इंडिया के साथ भी दोस्ती बनाओ, इनको ना इंडिया के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, इनको
100%,
क्योंकि ट्रेड जो है ना, देखो ना चाइना ने तो उनके इलाके पे कब्जे भी किए हैं,
लेकिन ट्रेड जारी है,
ट्रेड जारी है, ट्रेड नहीं रोकता इंडिया या चाइना के साथ, तो इनको भी ऐसी कोई बनानी चाहिए जी, एक टेररिस्ट अटैक या 50 टेररिस्ट अटैक, ट्रेड हमारी चलती रहेगी, ये इनके ऊपर हम बात करते रहेंगे
बेसिकली, वो बस
इनको जो है ना, लेकिन मैं इंडिया को भी कहती हूँ, इंडिया आप बड़े भाई हो, और छोटे भाई से कभी कोई गलती जाती है, ऐसे थोड़ी होता है उसको मारपीट के आप निकाल देते हो, यार छोटे भाई पाकिस्तान दोस्ती उसके साथ करो, ट्रेड करो, दोस्ती यारी बढ़ाओ, क्या यार लड़ाई करके तुम लोग मुंह बना के बैठे हो, बड़ा मुल्क है ना, बड़ा भाई है
वो, होते हैं ना मोहल्ले की बड़े लड़कों ने टीम बनाई है, छोटे लड़कों को लिफ्ट ही नहीं करा,
लिफ्ट ही नहीं करा,
तो इंडिया बड़ा भाई है उसने बड़े लड़कों के साथ टीम बना ली है तो छोटे भाई को लिफ्ट नहीं करा रहा। छोटा भाई जो है वो भी थोड़ा पठान टाइप का,
वो भी आगे दिखा रहा है,
वो कहता है भाई तू बड़ा तो बड़ा तो मैं भी अपनी जगह बड़ा हूँ कर ले।
हाँ, लेकिन ये जो है ना ये भाई छोटे लौंडों को भी अपने साथ रहा
चैलेंज टाइम जो है वो हमारा छोटे लौंडों के साथ जो है वो जनाब बिल्कुल। अब इस सेगमेंट के बाद जो कि ये मेरा और शाहजे जी का बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है, पूरे जीटीए में पूरे टोरंटो में बहुत मशहूर सेगमेंट है, आई नो आप लोग सब इसको बहुत पसंद करते हैं, और अगर आपको एडवर्टाइज करना हो इस सेगमेंट को तो आप आरफा मुजफ्फर साहिबा को कॉल कर लें जी, वो टेक केयर करती हैं सारा एडवर्टाइजिंग का, और शाहजे जी को कॉल कर लें कि भाई वो जो आमिर
6427242476
इस नंबर पर
कॉल कर लें
और अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम जी, आप कर सकते हैं,
धड़ा धड़ा आप हमें कॉल कर सकते हैं
और कॉल मैं खोल दूंगा सारी।
हाँ।
सारी लाइंस खोल दूंगा, आप करते रहें और $100 पर कॉल। ठीक हो गया,
ठीक है जी,
चलें जनाब आप
हमारे बाय फॉर नाउ।
शाहजी जी बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो आपसे फिर कल मुलाकात
होगी।
और तमाम सामाईन आपने कहीं नहीं जाना, नाज़रीन कहीं नहीं जाना, इस सेगमेंट के बाद हमारे साथ एक स्पेशल सेगमेंट जो कि लियाकत भाई हमारे भूली बिसरी यादें आपके साथ लेकर आते हैं वो जो है पेश करेंगे, और उसके बाद जो है आगे इसको जिशान कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे आमिर अहमद को इस वक्त जो है वो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
मौजूद खवातीन हजरात अस्सलामु अलैकुम, आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाजिर खिदमत है। आज हम एक मरतबा फिर फरमाशी गीतों का प्रोग्राम पेश करेंगे, यह आप तमाम सामाईन और नाज़रीन की मोहब्बत है कि आप हमें अपनी फरमाइशें भेजते हैं और हमारी हत्तुल वसा ये कोशिश होती है कि आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाए। इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके हमने ट्रिब्यूट भी पेश करने हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ आर्टिस्ट हैं, मेजॉरिटी आर्टिस्ट जो पाकिस्तान के हैं हमने उनको ट्रिब्यूट पेश कर दिया है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं हम चाहते हैं कि वो भी ऑनलाइन हमारे साथ हों ताकि उनसे बातचीत भी की जा सके और उन्हें फिर हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इसके अलावा फरमाइशी गीत जो हैं वो भी, और बाज़ दफ़ा जो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत कम गाया फिल्मों के लिए उनके गीत भी हम पेश करेंगे। आपकी जो राय है, आपकी जो सजेशंस हैं, उनका भी इंतजार रहेगा, आप हमें जो कमेंट्स देते हैं उससे हमारे हौसले बढ़ते हैं। तो पहले एक गीत हम देखते और सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और मजीद बातें करेंगे। फिल्म है आसपास, ये 1957 में ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म के शायर थे साहिल फारानी साहब और मौसीकी दी थी अख्तर हुसैन अखियां। अख्तर हुसैन अखियां ने मशहूर जो गुलुकारा थी कौसर परवीन, उनके साथ शादी की थी। कौसर परवीन जो थी वो आशा पोसले एक एक्ट्रेस थी पाकिस्तान की, उनकी छोटी बहन थी और बहुत अच्छा गाती थी कौसर परवीन साहिबा। तो अख्तर हुसैन अखियां साहब उनके खावन थे, और ये जो फिल्म आसपास है जिसका आप गीत देखेंगे और सुनेंगे, ये अलाउद्दीन का जो ब्रेक थ्रू मिला पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, अलाउद्दीन साहब ने हिंदुस्तान की फिल्म मेला में नरगिस जो फिल्म स्टार हैं उनके बाप का रोल अदा किया था फिल्म मेला में, उसके बाद वो पाकिस्तान जब आए हैं तो एक गुलुकार की हैसियत से वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए थे, लेकिन उन्होंने अदाकारी का भी शौक था, अदाकारी भी करते थे, और एक आम अदाकार की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में वो दाखिल हुए, लेकिन ये फिल्म आसपास में उनको ब्रेक थ्रू मिला और वो एक अवामी अदाकार जो है वो बन गए। ये गीत है सलीम रजा की आवाज में, फिल्म है आसपास 1957 की ये फिल्म है बेदर्द जमाने वालों ने, देखिए और सुनिए।
बेदर्द जमाने वालों ने कब दर्द किसी का जाना है, जग से कोई उम्मीद न कर ये झूठा है बेगाना है। जितना भी कोई मजबूर हुआ उतना ही जहाँ ने जुल्म किया, सुख छीन के दिल को तोड़ दिया। जितना भी कोई मजबूर हुआ उतना ही जहाँ ने जुल्म किया, सुख छीन के दिल को तोड़ दिया। परी याद को हंस के ठुकराना इसका दस्तूर पुराना है, जग से कोई उम्मीद ना कर ये झूठा है बेगाना है। मुख्तार खुदाओं पर क्यों तेरा जोर नहीं चलता, क्या तू भी इनसे हार गया। इन खुद मुख्तार खुदाओं पर क्यों तेरा जोर नहीं चलता, क्या तू बिन से हार गया। तूने भी यूं ही बेबस होकर दुख सहना है गम खाना है, जग से कोई उम्मीद ना कर ये झूठा है बेगाना है। इस झूठी जालिम दुनिया में सच कहने वाले रोते हैं, अय्यार यहाँ खुश होते हैं। इस झूठी जालिम दुनिया में सच कहने वाले रोते हैं, अय्यार यहाँ खुश होते हैं। जो सीधी साधी बात कहे वो पागल है दीवाना है, जग से कोई उम्मीद ना कर ये पागल है दीवाना है। बेदर्द जमाने वालों ने कब दर्द किसी का जाना है, कब दर्द किसी का जाना है।
معزز خواتین و حضرات، جیسے آپ کو یہ علم ہے کہ نصرت نذیر صاحبہ جو ریڈیو پاکستان کی ایک گلوکارہ تھی، ان کو پہلی دفعہ انور کمال پاشا صاحب نے فلم قاتل 1955 میں، یہ فلم بنی قاتل، اس میں ایک چھوٹا رول دیا، سائیڈ رول جو تھا. پھر اس کے بعد اسی سال فلم پتن میں وہ ہیروئن بنی، اور پھر ایسا کام کیا مسرت عزیز صاحبہ نے کہ وہ چھاتی چلی گئیں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں. اور قاتل ان کی جو پہلی فلم تھی، وہ قاتل صرف ان کی پہلی فلم نہیں تھی، بلکہ یہ نیر سلطانہ صاحبہ، اسلم پرویز اور سلیم رضا صاحب، ان کی بھی پہلی فلم تھی. تو فلم مرزا صاحبہ، یہ سدھیر صاحب اس کے ہیرو تھے. 1956 میں یہ فلم بنی، مسرت نذیر صاحبہ اس فلم کی ہیروئن تھی. گانا دیکھتے اور سنتے ہیں فلم مرزا صاحبہ سے، آواز زبیدہ خانم، شاعر قتیل شفائی، اور اس فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر اور شاعر، میوزک ڈائریکٹر، شاعر جو تھے وہ قتیل شفائی تھے، اور میوزک ڈائریکٹر جو تھے خواجہ خورشید انور صاحب. آواز ہے زبیدہ خانم کی، زندگی ہے بے قرار، اور پکچرائز ہوا ہے مسرت نذیر صاحبہ پہ. دیکھیے اور سنیے.
جانے والے آگ جایا دو جانے والے. You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
उदाहरण के लिए अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
काश घर पैसे भेजना आसान ते सुखाला हुंदा सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर दे नाल विदेशां विच वसे तुहाडे प्यारे उसे दिन स्थानक मनी ग्राम केंद्रां तो कैश पिकअप कर सकदे हन यानी कि ओ पैसा उसे दिन लै सकदे हन जिवें कि ए दिन अते ए दिन जे तुसी प्यार दा सुनेहा भेजना होवे तां $0 सीआईबीसी ट्रांसफर फी राही अपने प्यारियां नूं उसे दिन कैश पिकअप सुविधा राही भेजो वधेरी जानकारी लई cibc.com/cashpickup ते जाओ शर्तां अते सीआईबीसी फॉरन एक्सचेंज रेट्स लागू सीआईबीसी एंबिशंस मेड रियल
مزید خواتین و حضرات ہمارے ملک کی ایک مایا ناز گلوکارہ نسیم بیگم جن کو نور جہاں ثانی بھی کہا جاتا تھا بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا بہت اچھا گاتی تھی غزل گوئی میں یا لائٹ گانوں میں ان کا نام جو ہے ہمیشہ یاد رہے گا فلم دروازہ 1962 میں یہ فلم بنی تھی یہ سیف الدین سیف اس فلم کے پروڈیوسر بھی تھے ڈائریکٹر بھی تھے اور شاعر بھی تھے سیف الدین سیف صاحب اور یہ فلم امانت علی خان صاحب جنہوں نے گایا ہے انشا جی اٹھو اب کوچ کرو یہ امانت علی خان صاحب کی بھی پہلے ہی فلم تھی اس سے پہلے انہوں نے کسی فلم میں گیت یا غزل نہیں گائی تھی امانت علی خان صاحب کی فلم دروازہ پہلی فلم تھی اور اس فلم کی ہیروئن تھی نیرو بیگم اس فلم کے دو موسیقار تھے تین موسیقار ایک سلیم اقبال کی جوڑی اور دوسرے تھے رشید افرے اور یہ گیت جو آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اس کی موسیقی دی تھی سلیم اقبال صاحب نے چھپ گئے ستارے ندیا کنارے تم نہ ہی آئے پیا تم نہ ہی آئے آواز نسیم بیگم اور شاعر ہیں سیف الدین سیف دیکھیے اور سنیے خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام ہر جمعرات کی شام کو 7 بجے ہمارے ریڈیو اسٹیشن ساز و آواز 770 AM ٹورانٹو، ہمارے ٹیلی ویژن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے. ضرور دیکھیے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے. مرزا خواتین و حضرات، ایس ایم یوسف صاحب جنہوں نے ہندوستان کی میں بہت اصلاحی فلمیں بنائیں، 1960 میں جب وہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے پہلی فلم سحیری بنائی، فلم ہونہار بھی بنائی، فلم اولاد بھی بنائی، کافی فلمیں ایسی بنائی جو گھریلو جن کو فلمیں کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسی فلمیں بنائی، کمال صاحب جو تھے ان فلموں کے ہیرو تھے، فلم آشیانہ بہت مشہور فلم، یہ ایسٹرن اسٹوڈیوز میں، یہ کراچی میں یہ فلم بنی تھی، اس کی ہیروئن جو تھی زیبا بیگم تھی، بڑی ہٹ فلم آشیانہ، 1964 میں یہ فلم بنی. اور یہ آپ گیت دیکھیں گے اور سنیں گے، اس میں آپ کو سید کمال اور زیبا بیگم نظر آ رہے ہیں، موسیقی ہے اے حمید صاحب کی اور شاعر ہیں فیاض ہاشمی، آواز ہے احمد رشدی صاحب اور مالا بیگم کی. دیکھیے اور سنیے.
جی دیکھا جو انہیں دل نے چپکے سے کہاں آئے، اس بات کا ڈر ہے یارو کہیں پیار نہ ہو جائے. دیکھا جو انہیں دل نے چپکے سے کہاں آئے، اس بات کا ڈر ہے یارو کہیں پیار نہ ہو جائے. دیکھا جو انہیں دل نے ایک راہ میں دو راہی آغاز تو اچھا ہے، وہ میرے بنیں گے جی ساتھ رہیں گے گر خواب یہ سچا ہے. ایک راہ میں دو راہی آغاز اچھا ہے، وہ میرے بنیں گے جی ساتھ رہیں گے گر خواب یہ سچا ہے. سوئی ہوئی قسمت بھی بیدار نہ ہو جائے، اس بات کا ڈر ہے یارو کہیں پیار نہ ہو جائے. جی دیکھا جو انہیں دل نے چپکے سے کہاں آئے، اس بات کا ڈر ہے یارو کہیں پیار نہ ہو جائے. جی دیکھا جو انہیں دل نے بات کا ڈر پھر بھی
कहीं प्यार न हो जाए, जी देखा जो उन्हें दिल ने चुपके से कहा है। इस बात का डर है यारो, कहीं प्यार न हो जाए, जी देखा जो उन्हें दिल ने हो
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। केटरिंग स्पेशल 8 आइटम्स फॉर जस्ट 999, मिनिमम 30 पीपल्स। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 905-607-5000, 905-607-5000।
मदद ख्वातीन हजरात, मोहम्मद अली साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं, चिराग जलता रहा फिल्म बनी, मोहम्मद रई साहब की पहली फिल्म थी, फजल करीम फजली साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। सदाकार तो वो थे, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में भी काम किया, हैदराबाद में भी काम किया, लेकिन फिल्म उनकी जो थी वो थी चिराग जलता रहा। उसके बाद काफी फिल्मों में विलन का रोल भी अदा किया, फिर जंगजू फिल्मों के हीरो बन गए। एक अकबर अली अकू हिंदुस्तान में जिन्होंने फिल्म अल हिलाल बनाई थी, उनके साथ मोहम्मद अली साहब ने फिल्म प्रोड्यूस की और वही अल हिलाल को जो रीमेक बनाया, उस फिल्म का नाम था आदिल। और भी तीन चार फिल्मों में मोहम्मद अली साहब ने जंगजू फिल्म, जिससे जंगजू हीरो होते हैं, काम किया। फिल्म तुम मिले प्यार मिला एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने इकबाल यूसुफ, जो उनके एसएम यूसुफ साहब के बेटे थे, उस फिल्म में काम कर रहे थे। जेबा साहिबा के साथ उनकी शादी हुई उसी सेट पे, तुम मिले प्यार मिला के सेट पे। तो उसके बाद मोहम्मद अली साहब ने दो फिल्में प्रोड्यूस की, एक फिल्म थी जैसे जानते नहीं और दूसरी फिल्म थी आग। ये घरेलू फिल्में थी, एक जबरदस्त, मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी फिल्में, और जो इस फिल्म इन फिल्मों के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे निसार बजमी साहब। तो फिल्म आग का एक गीत देखते हैं। 1967 में अली जेब प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। आवाज है मैडम नूरजहां की, शायर हैं मसरूर अनवर और मौसीकी है निसार बजमी साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है सुपरस्टार जेबा बेगम पे। देखिए और सुनिए।
बीते दिनों की याद